नमस्ते कृष्णचंद्राय परमानंदवर्धनम् गोविंदं गोकुला नंदम् राधिका प्राणवल्लभम् नमो नलेन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने वंदे वृंदावन गुरुं कृष्णं कमललोचनं वल्लभे वल्लभं देवं राधालिंगित विग्रहं ब्रह्मपीडाभिरामं ब्रह्मपीडाभिरामं रत्रं ब्रह्मपीडाभिरामं मृगामदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं त्रिभंगं तलितवदनं भूषितं वैजयन्त्या वंदे वृंदावनस्त्वं युवते सतवृतं ब्रह्मवेशं गोपालं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरं मर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेळिसंयुक्तं पीताम्बर सुशोभितं अवाप्त तुलसीगंधं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्ण कृष्ण महायोगिन् भक्तानं अभयं कर गोविंदं परमानंदं सर्वंगमे वस मानय वेदान्नो धरते ஜகன்னிபஹதே பூகோளமுத்விவ்ரதே தைத்யம் தாரயதே வலிம் சலயதே க்ஷத்ரக்ஷயம் குருவதே பௌலஸ்த்யம் ஜயதே ஹலங்கலயதே காருண்யமாத்வன்வதே மிருச்சான்முர்ச்சயதே தசாக்ருதி க்ருதே கிருஷ்ணாய துப்யம் நமஹ. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஜ்ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷோரன்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பஜ கோவிந்த கோவிந்த கோபால. பஜ கோவிந்த கோவிந்த கோபால. பஜ கோவிந்த கோவிந்த கோபால. பஜ முரளி மனோஹர நந்தலால. பஜ முரளி மனோஹர நந்தலால. பஜ கோவிந்த கோவிந்த கோபால. பஜ கோவிந்த கோவிந்த கோபால. கிரந்தராஜ ஸ்ரீமத் பாகவதம் கீ ஜய். அபய சரணாரவிந்த பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத கீ ஜய. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிருஷ்ண ததா பலராம் கா மதுராமே பிரவேஷ் அத்தியாய 41 அண்ட் ஸ்லோக சங்கியா 16. தேவ தேவ ஜகன்னாத் தேவ தேவ ஜகன்னாத் புண்ய ஸ்ரவண கீர்த்தன புண்ய ஸ்ரவண கீர்த்தன யதுத்தமோத்தம ஸ்லோக யதுத்த ಸರ್ವೋತ್ತಮೋತ್ತಮಃ ಶ್ಲೋಕ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೇ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೇ ದೇವ ದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಯದುತ್ತಮೋತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತುತೆ ದೇವದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಯದುತ್ತಮೋತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ದೇವದೇವ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ ಓಕೇ ಸ್ವಾಮಿ ಜಗತ್ನಾಥ ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕೇ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರವಣ ಸುನ್ನ ಕೀರ್ತನ ತಥಾ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ಣ ಯದುತ್ತಮಂ ಯದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೋಸೆ ಸ್ವತಿ ಕಿಯೇ ಸ್ತುತಿ ಕಿಯೇ ಜಾನೆ ವಾಲೆ ನಾರಾಯಣ ಹೇ ನಾರಾಯಣ ನಮಃ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಸ್ತು ಹೋಯೆ ತೇ ಆಪ್ಕೊ ಅನುವಾದ ತಥಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಬೈ ಹಿಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಯ ಹೋ. ಹೇ ದೇವದೇವ್ ಹೇ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹೇ ಆಪ್ ಜಿನಕೆ ಯಜ್ಞಕೋ ಯಶ್ ಕೋ ಸುನ್ನ ಔರ್ ಗಾಯನ್ ಕರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹೇ. ಹೇ ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇ ಪುಣ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ ಪರಂ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಜಬಕಿ ಇಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಹೀ ಹೈ ತೋ ಮೇ ದೂಸರಾ ಶ್ಲೋಕ ಕಾ ಭೀ ಪಾಠ ಕರ್ತಾ ಹೂ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಆಯಾಶ್ರೇ ಭವತೋ ಗೇಹಂ ಮಾರ್ಜ್ಯ ಸಮನ್ವಿತ ಯದು ಚಕ್ರ ವಿಹಂಗ ಹತ್ವಾ ವಿತಿರೇಷ್ಯೆ ಸುರುಹುತ್ ಪ್ರಿಯಂ. ಪರಂ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಕಹಾ ಮೇ ಅಪ್ನೆ ಬಡೆ ಭಾಯಿ ಕೇ ಸಾಥ್ ಆಪ್ಕೆ ಘರ್ ಆಉಂಗಾ ಕಿಂತು ಪಹಲೆ ಮುಝೆ ಶತ್ರು ಜಾತಿ ಕೆ ಶತ್ರು ಕೋ ಮಾರ್ ಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಮಿತ್ರೋ ತಥಾ ಶುಭ ಚಿಂತಕೋ ಕಾ ತುಷ್ಟ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಕುರ್ ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸೋಲಾ ಮೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಪ್ರಶಂಸಾ ಯದುತ್ತಮ ಕಹಕರ್ ಕೀ ಹೈ. ಯಹಾಂ ಪರ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಯಹ ಕಹಕರ್ ಉಸ್ಕೀ ಪುಷ್ಟಿ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಮೇ ಯದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೂ ಅತ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಮುಝೆ ದೂಸರೋಕೆ ಶತ್ರು ಕಂಶ ಕೋ ಮಾರನಾ ಚಾಹಿಯೆ ತಬ ಮೇ ಆಪ್ಕೆ ಘರ್ ಆಉಂಗಾ. ಈ श्लोक में अक्रूर जी भगवान का प्रशंसा कर रहे हैं। अक्रूर शब्द का अर्थ है जो क्रूर नहीं है, सबका शुभ चिंतक है और सभी को शांत भाव से व्यवहार करते हैं, वो अक्रूर है। क्रूरता उनमें दिखाई नहीं देता, तभी वो भगवान के एक उत्तम भक्त बने। परंतु ये जो चरित्र है भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम मथुरा गमन कर रहे हैं, पर ये चरित्र से पहले थोड़ी सी पीछे जाना पड़ेगा, तभी आप सभी को आनंद आएगा। कंस बहुत असुरों को भेजा भगवान कृष्ण और बलराम को मारने के लिए। भविष्यवाणी ये हुई थी जब वो कन्या को मारने चले तब कन्या स्वर्ग में चली गई योग माया और बोली, रे मूढ़ कंस तो मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले गोकुल में जन्म ले चुके हैं। किंतु कंस को ये पता नहीं था वो बालक कौन है, इसलिए गोकुल के जितने बच्चे हैं सबको मारना चाहा। उनमें से कोई उसका बालक होगा अष्टम गर्भ में जो जन्म लिया बा लेगा वो भी मरेगा, कंस का यही प्रयास था। पर कंस उग्रसेन जी का पुत्र था, उग्रसेन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का अनन्य भक्तों में एक भक्त था, तो भक्त की गर्भ में ये असुर आया कहां से जो भगवान से द्वेष कर बैठा। परंतु द्वेष करे कोई बात नहीं, अनुकूलेन भक्ति प्रतिकूलेन मुक्ति। जब कोई भक्त भगवान के अनुकूल हो करके उनकी सेवा कीर्तन अर्चन वंदन करता है तो उसको भक्ति प्राप्त होता है। परंतु जो भक्त लोग द्वेष भाव से शत्रुता से भगवान श्री कृष्ण की ओर जाते हैं उन्हें मारने के लिए और उन्हें कुच्छित भाषा में गाली भी देते हैं, उन भक्तों को भगवान ऐसे ही मुक्ति प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्त मुक्ति की वांछा नहीं करते, भक्त जब भक्ति के अभ्यास में रहते हैं मुक्ति हाथ जोड़ करके वो भक्त के सामने खड़ी रहती है। मुक्ति कहे गोपाल सो मुझको मुक्ति बताओ, व्रज रज उड़ी मस्तक लगे धन्य धन्य हो जाओ। गोपाल कहते हैं, भगवान कृष्ण चंद्र कहते हैं, हे मुक्ति देवी ब्रजभूमि में जाओ, यदि ब्रज धूली उड़ करके तुम्हारे मस्तक में लग जाए तो तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र को जो पूजते हैं, जो अपनी मानसपट में बैठाए हैं, हृदय में बैठाए हैं, उनकी क्या कहना। परंतु भक्त की घर में ये असुर आया कहां से, कंस। कंस वास्तव में उग्रसेन की पुत्र नहीं थे, कंस दुर्मिला असुर का पुत्र था। कैसे, ना उग्रसेन की पत्नी इंदुमती ऋतुस्राव के चतुर्थ दिन स्त्री शुद्ध होती है, चतुर्थ दिन में पति के लिए और पंचम दिन में देव कार्य के लिए। तो स्नान शौचादि करके इंदुमती अपनी खुली हुई लंबे बाल को धूप में सुखाने के लिए छात के ऊपर अपनी बाल को सुखा रही थी। शून्य में उड़ता हुआ जा रहा था दुर्मिल नामक असुर और दैवी दुर्विपाक से असुर का आंखें इंदुमती के ऊपर पड़ गई। इंदुमती अनजान अवस्था में वो तो अपनी बाल को सुखा रही थी धूप में, परंतु असुर की आंखें जब पड़ा इंदुमती बड़ी लावण्यवती थी, सौंदर्यता की पूर्ण रूप में ठाकुर जी उनको बनाए था, और असुर की आंखें श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय हो। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संग जायते कामः। जब असुर का ध्यान, असुर की आंखें इंदुमती के ऊपर पड़ा तो आंखों के माध्यम से मन को प्रभावित किया और मन से वो इंदुमती के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते इंदुमती कैसे प्राप्त हो जाए, ये विचार करके एक कृत्रिम रूप धारण करके महाराज उग्रसेन के सामने प्रकट हुआ। और उग्रसेन देखा ये बड़ा तेजस्वी बलवान। उग्रसेन ने कहा कोई बात नहीं, तुम आए हो सो तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ, मतलब रक्षक, सिक्योरिटी गार्ड। और महाराज उग्रसेन ने उनको सिक्योरिटी रूप में स्थान दे दिया। और द्वारपालगिरी करते करते आंखें तो है इंदुमती के ऊपर, इतनी सेवा करने लगा, इतनी सेवा करने लगा तो राजा ने कुछ दिनों के बाद रानी अंतपुर का सिक्योरिटी बना दिया। तब ये दुर्मिला असुर को ये पता था जे रानी की हर कार्य के ऊपर इसकी आंखें था। ऐसा समय आया रानी रजोवती के फिर चतुर्थ दिन में प्रभात समय में कोई उसको ना देखे। उन दिनों में भारत के महिलाएं सब नदी में ही स्नान करती थी। कहां था हमारा टेप खोल दो तो पानी घर के अंदर आए, शौचालय करने के लिए सब बाहर जाते हैं। आज भी भारतवर्ष में बहु लोग बाहर जाते हैं। तो उस समय इंदुमती का पीछा करते हुए उन्होंने उग्रसेन रूपी रथ बना लिया और उग्रसेन के रथ लेकर के और उग्रसेन के रूप धारण करके वो नदी के किनारे इंदुमती के पास पहुंच गया। इंदुमती जल से उठी, देखा पतिदेव सामने। बोले क्या हुआ पतिदेव, आप यहां कैसे? बोले ये चार दिन नहीं इंदुमती, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गया, चार युग जैसे लग रहा है मुझे, आओ इसीलिए रथ लेके आया हूं, रथ में बैठो थोड़ा वन विहार में जाते हैं। इंदुमती समझ नहीं पाई और उग्रसेन रूपी माया की शरीर के साथ बैठ करके रथ में वन विहार में चली गई। तत्पश्चात जब इंदुमती को ये पता चला ये कोई छद्मवेशी राक्षस से दुर्मिलासुर, इंदुमती ने उसे श्राप दिया जे इस गर्भ में जो भी पुत्र होगा पहले वो तुझे ही मारेगा। और ऐसा ही हुआ, कंस ने अपने पिता दुर्मिलासुर का वध किया और उग्रसेन के पास रहा। तभी एक कहावत है, आम के बीज से जाम नहीं फलता। तो असुर की रक्त से जन्म होने के कारण स्वभाव इसका असुर का ही बना कंस का। तो कंस वसुदेव जी के सभी पुत्रों को मारा, क्योंकि शून्यवाणी ये हुई थी अष्टम गर्भ के शिशु। और वसुदेव जी आए, जब प्रथम संतान हुआ वसुदेव जी आकर के अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए कंस के दरबार में पहुंचे और कंस ने देखा ये तो अष्टम गर्भ की पुत्र मेरा हंत करेगा, मेरा विनाश करेगा, तो ये तो बड़ा साधु आदमी है, अपना प्रतिज्ञा के लिए बालक को ले आया। बोला कोई बात नहीं, ये तो आठवां संतान नहीं है, ये तो आपका प्रथम संतान है, तो तुम इसको ले जाओ। तब वसुदेव पुत्र को लेकर के चले गए। लीला तो आगे बढ़ नहीं सकता, अभी तो ये अनर्थ हो गया। नारद जी प्रत्येक लीला को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। नारद जी एक कमल के फूल को लेकर के राज दरबार में जहां कंस बैठा हुआ था वहां उपस्थित हो गए। होकर के बोले जे देखो कंस, तुमने तो उसको छोड़ दिया, पर देखो यहां से गिन लो ये पंखड़ियों को, देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, फिर इधर से गिनो एक दो तीन चार आठ, फिर इधर से गिनो एक, पर आठवां संतान तो तुम्हारा प्राण का नाश करेगा, ये शून्यवाणी हुआ था। पर कंस वो आठवां संतान कौन है? पहला भी हो सकता है, बीच वाला भी हो सकता है, और मिडिल वाला भी हो सकता है। कंस चकरा गया। कंस ने बोला हां आपने ठीक कहा, लिया शिशु को, एक कर करके छह संतान को मारा। सप्तम संतान संकर्षण बलराम जन्म हुए, वो मतलब गर्भ से हरण होकर के बैठ गए रोहिणी के गर्भ में, और अष्टम संतान भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। परंतु बहु असुरों को मारने के बाद एक दिन नारद ने फिर सोचा, ये तो खाली असुरों को मारते जा रहे, लीला तो कुछ आगे बढ़ता ही नहीं, तो जल्दी जल्दी लीला का प्रकट हो जाना चाहिए। नारद जी एक दिन पुनराय प्रकट हुए, बोले कंस तुमको ये बात पता है? बोले कौन सी बात है? बोले ये वसुदेव देवकी और नंद और यशोदा, ये सब तुमको धोखा दे रहे हैं पीछे पीछे। तुमने जितना असुरों और बकासुर की बहन पुतना को भेजा, ये कृष्ण बलराम ने ये सबको मारा है। बोले हाँ कहाँ रहते हैं? बोले नंद बाबा के घर में ये छुपे बैठे हुए हैं, ये छुप छुप के तुमसे बदला लेते हैं। तो बोले आज वसुदेव की हत्या करना है कैसे भी। बोले वसुदेव की हत्या कर देने से क्या होगा? तुम्हारे शत्रु तो नंदांगण में खेल रहे हैं, नंद बाबा के घर में बैठे हुए हैं। तब उन्होंने सोचा इतने असुर और सप्त में परास्त हो गया, तो अब मैं क्या करूं? तब उन्होंने अक्रूर को बुलाया। अक्रूर यदुवंश में श्रेष्ठ थे, और अक्रूर के पति कंस का भरोसा था, ये धोखा नहीं देगा। तो अक्रूर को बुलाए, बुला करके बोले जे देखो मुझे ये लोग ने धोखा दिया, मैं वसुदेव को भी मार दूंगा और ये नंद को भी मार दूंगा, मार देने से मैं पूरा निष्कंटक होकर के शांति से राज्य को संभालूंगा, तुम मेरे साथ दो और जो मैं कहता हूं तुम ये कार्य करो। अक्रूर जी बोले कौन सा कार्य है? बोले तुम जाओ कृष्ण और बलराम को मैं एक धनुष यज्ञ रचाऊंगा, और उस यज्ञ में तुम सबको बुलाओ, नंद बाबा को भी बुलाओ और कृष्ण बलराम को लेके आओ। जब कृष्ण बलराम तुम्हारे साथ यहां आएंगे तो पहले मैं कुबलाय पीड़ा नामक हाथी को द्वार देश में रखूंगा, वो उनको मार देंगे। उनका हाथी के सामने उनका क्या चलेगा? मूड मंद व्यक्ति था ना, वो भगवान की लीला को कैसे समझ सकता था? द्वेष में देखता है। और कंस समाधिस्थ था, पानी में कृष्ण को देखा, पानी को फेंका, भोजन में कृष्ण को देखा, भोजन में देखा, और मिरार के सामने खड़ा हो गया अपना रूप देखने के लिए, वहां भी कृष्ण को देखा। जो वो इतस्तत तो होकर के भ्रमित करने लगा, कृष्ण 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 कृष्ण, दिन और रात होने लगा, नींद में सोता हुआ कृष्ण नजर आए, उठ बैठा, कृष्ण कृष्णाय कृष्णेति यो मं भज्यति नित्यशः जलं भित्वा यथा पद्म नीरयत्यारयाम्यहम्। कृष्ण के नाम उच्चारण से यदि कंस आदि असुरों का मुक्ति हो सकता है, पर जो भक्त कृष्ण कृष्ण रोज जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पद्म पुराण में भगवान कहते हैं कृष्ण कृष्णाय कृष्णेति यो मंग भज्यति नित्यशः, जो नित्य प्रति कृष्ण कृष्ण चित्कार करके मेरा नाम का जप करता है, मैं उसे जिस प्रकार पंकज की कमल के फूल पंक से उत्पन्न होकर के अनायास से पानी को भेद करके वो तालाब के अंदर खिल जाता है, इसी प्रकार दुर्भाग्य से यदि मेरा भक्त नरक कुंड में भी गिर जाए, उसकी शिखा को उठा करके मैं ऐसे ही गोलक और वैकुंठ पहुंचा देता हूं। क्या कहना? तो कंस ने आज अक्रूर को याद किया और अक्रूर को बोला जाओ अक्रूर तुम कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर मन मन में सोचता है दैव दौड़ी मनीष गाय जेणिकी ओ टारी तेणिकी जाई। जगन्नाथ का जगन्नाथ लैंग्वेज का पद है। बोले दैव की विधाता पुरुष भगवान श्री कृष्ण रसी है, जैसे एक बैल बा गाय को हम गले से बांध देते हैं और रसी को जब व्यक्ति जिस तरफ से खींचता है और गाय बा बैल उस तरफ से मुख मुड़ के चलना पड़ता है। हे कंस तुम भगवान की लीला को क्या समझोगे, भगवान को मारना चाहते हो? कोई बात नहीं, ये तो परम सौभाग्य की बात है, आज चतुर्दश ब्रह्मांड के पति का दर्शन होगा, इसी बहाने भगवान को मेरा नयन देखेगा, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। कंस को बोला संध्या तक मैं गोकुल में पहुंच जाऊंगा और दूसरे दिन मैं कृष्ण बलराम को आप तक पहुंचाऊंगा, आप सभी तैयार करो। रथ में बैठ करके अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए, बलराम जी और कृष्ण को रथ में बैठा करके वापस ले आने के लिए चले। कैसे चले? गोविंद 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 वंदे तो चरण रविंद योगी करंती जारे ध्यान हरई पराभव मान अभीष्ट फल काम धेनु तीर्थ निर्गत तो चरणु शेरेणु पड़ु मोर मुंडे गुण गाई पदे पदे अक्रूर बोले हे गोविंद 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 वंदे तो चरणारविंद। हे गोविंद गोविंद बड़ा प्यारा नाम है भगवान श्री कृष्ण का। अमरकोश पुराण विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विस्तर श्रव दामोदर हृषिकेश केशव माधव शुभु दयितारी पुंडरी काक्ष गोविंद गरुड़ध्वज पीताम्बर अच्युत सर्गिन विश्वकसेन जनार्दन उपेन्द्र इंद्रावरज चक्रपाणी चतुर्भुज पद्मनाभ मधुरी पूर्वासुदेव त्रिविक्रम देवकी नंदन सौरी श्रीपति पुरुषोत्तम वनमाली बली धुंसी कंसरात्रीर अधोक्षज। हे गोविंद हे गोविंद गोविंद गो शब्द में यहाँ इंद्रिया इंद्रिया का जो स्वामी है वो गोविंद है, जो गौओं का रक्षा करने वाले हैं वो गोविंद है। वंदे तो चरणारविंद। हे गोविंद आज कंस ने मेरे प्रति बड़ी कृपा किया हुआ है, इसलिए आपका चरण वंदन में कर रहा हूं। फिर योगी करंती जारे ध्यान वो चरण को आज मैं दर्शन करूंगा, जिस चरण को पाने के लिए योगी बड़े बड़े ब्रह्मा शिव आदि देवता तरस जाते हैं वो आज मुझे मिलेगा। योगी करंती जारे ध्यान हरई पराभव मान हरई जब उस चरण के दर्शन किसी जीव को हो जाए, पराभव संसार का प फ व भ और म, प में पराभव, पराभव संसार की जितनी दुख जातनाएं हैं, दुख क्लेश परित्राणम जिहाग्रे वसती जस्य हरि रित्यक्षर द्वयम्, जिसकी जिहा के अग्रभाव में कृष्ण कृष्ण दो अक्षर विद्यमान है, वो संसार का दुख और क्लेश ऐसे ही निवृत्ति हो जाता है तुरंत। क्योंकि आपन्न संस्मृति मिघोराम यन्नाम विवसो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद्धि भेति स्वयं भयम्, जिसके नाम पर भय भी डर भी थर थर कांप उठता है वो भगवत नाम है। और विदुर जी उस भगवत नाम को लेकर के चल रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। कंस का अनुकंपा हो गया है, कंस ने अक्रूर को बताया तुम लेकर के आओ, अपने मन में अक्रूर जी सोचते हैं जिस चरण को पाने के लिए बड़े बड़े योगी ब्रह्मा शिव आदि देवता तरस जाते हैं, हे गोविंद आज वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। तीर्थ निर्गत तो चरणु, वो चरण की वो महिमा है ठाकुर जी, जिसके चरण से तभी सभी तीर्थों का निर्गत हुआ है। तीर्थ चरण गंगा जैसे नदी भगवान के चरण से निकली हुई है। और सभी और एकादश स्कंद भागवतम में उद्धव जी ऐसे कहते हैं, सकल तीर्थ तो चरणु, हे भगवान सभी तीर्थ जे तुम्हारे चरण से निकला हुआ है, बद्रिका जीवी के कारण मैं फिर बद्रिका आश्रम मुझे क्यों भेज रहे हो, बद्रिका क्यों जाऊं, जब चरण आप मेरे सामने ही उपस्थित है तो जिस चरण से सभी तीर्थों का उद्गम है, उद्गम सूत्र ही आपका चरण है, वो चरण को छोड़ करके मुझे आप क्यों बद्रिका आश्रम भेज रहे हो गोविंद। और अक्रूर जी क्या बोल रहे हैं, ना तीर्थ निर्गत तो चरणों, जिसके चरण से सभी तीर्थों का आगमन हुआ है, से रेणु उस चरण के थोली सी धूर यदि मेरे मस्तक के ऊपर पड़ जाए मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, और आपका कीर्तन करते हुए ईच स्टेप ऑफ माई लाइफ आई विल चेंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करता हुआ मन में ध्यान करते हुए। कैसे ध्यान किया, ना जैसे कछुआ, कछुआ पानी के अंदर डूबा रहता है और बच्चों को ऊपर छोड़ रखा है मिट्टी के नीचे और पानी में बैठ करके ध्यान जुड़ता है और यहां से अंडे फट जाते हैं। मछली आंखों से देख करके अपनी बच्चों को अंडे को फटाता है और पक्षी अपनी पंख के नीचे गर्मी दे करके स्पर्श शक्ति से अपने अंडे को फटाता है। और ये और रथ में बैठे बैठे अक्रूर जा रहे हैं और ध्यान भगवान के चरण में निवास कर रहे हैं जैसे कछुआ, और कीर्तन करते करते सोचते सोचते वो अक्रूर जी वृंदावन में पहुंच गए, गोकुल में पहुंच गए। संध्या का संध्या आगमन था। संध्या किसे कहते हैं, संध्या का परिभाषा है शास्त्रों में, जब शरीर का लोम आंखों से ना दिखे वो संध्या समय है, अपना शरीर का लोम अपनी आंखों से ना दिखे वो संध्या है। गोधुरी समय क्यों कहा गया, ना उस समय गायें मतलब वापस आती है और गायों की धूल से भगवान सूर्य की किरण जो थोड़ा थोड़ा वो भी बंद हो जाता है, वो समझना वो संध्या काल है। और अक्रूर जी वो संध्या काल में पहुंच गए, भगवान गोधन इत्यादि कर रहे थे, दूर से भगवान देख रहे हैं, यही कृष्ण होंगे और यही बलराम होंगे। और भगवान श्रीमन कृष्णचंद्र और बलराम बड़े भाई बलराम जी दोनों गायों को लेके आए और गोगष्ठ में बांध दिए और खीर वगैरह दहन किए और स्नान शौचादि करके जब बाहर आए वस्त्र आभूषण हो करके तब अक्रूर जी ने देखा जे नीलांबरधारी भगवान बलराम जी हैं और पीतवसन में पीतांबरधारी भगवान कृष्ण हैं। कृष्ण की परिभाषा द्वैपायन मुनि व्यास देव दशम स्कंद भागवत में देते हैं, नहीं तो कृष्ण को हम कैसे पहचानते हैं। ब्रह्मा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्दवास कनक कपेशम् वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुर् अधर सुधया पुरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद् गीतकीर्तिः। जिनके सर के ऊपर मयूर के पंख विद्यमान है, जो त्रिभंगी में खड़े हैं और वेणु जिनकी अधर को चुम्बन कर रहा है, गले में वैजयंती माला कौस्तुभ मणि विराजमान किए हुए हैं और वो गोप बालों को के साथ साथ समस्त वृंदावन को परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे मन मोहक रूप देव दुर्लभ रूप को जब अक्रूर ने देखा, अक्रूर रहा नहीं पाया और उनकी चरण में गिर पड़ा अर्थात प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र अक्रूर को उठाए, गले लगाए और बलराम जी भी लगाए और उनको घर के अंदर ले गए। जब घर के अंदर ले गए तो नंद बाबा ने पहले पूछा, अक्रूर जी किस कि किमर्थे आगमन तब, किस लिए आपका आगमन हुआ है? तो अक्रूर जी सारी बात बताया जे इस के कारण से मैं आपके पुत्र दोनों पुत्रों को लेने आया हूं और काल धनुयज्ञ आयोजन कर रहा है कंस और आप सभी का स्वागत किया। जैसे ही माता जसोदा के कान पर ये बात आया कृष्ण बलराम जी को लेने के लिए अक्रूर रथ लेकर आया है और गोपियों के मन में भी चांचल्यता खेल गई और सारी गोपियां और माता यशोदा त्रसित हो गई। नंद बाबा तो सबको बोला कंस के आदेश है, काल प्रभात में हम जाएंगे, गाय बैल को सब तैयार करो, घी दूध सब बनाओ, लेकर के उस यज्ञ में हम पहुंचेंगे। किंतु माता यशोदा के मन में खेद आ गया, पूर्ण भाव के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तीन प्रकार की भाव मुख्य है। कौन कौन मुख्य है? ना प्रेम, ये तीन विभाजन है प्रेम का, शुद्ध प्रेम का। प्रथम प्रेम है पूर्व विराग प्रेम। पूर्व विराग प्रेम में जैसे अंधी हो करके गोपियां छलांग लगाई, कुछ नहीं दिखा, केवल देखा कृष्ण, जहां देखा कृष्ण, पति में देखा कृष्ण, पुत्र में देखा कृष्ण, रंधन में देखा कृष्ण, शयन में देखा कृष्ण, जागरण में देखा कृष्ण, पिबती सर्व इंद्रिय ही पिबती ही कृष्ण नाम सहा गोपी। गोपियां कृष्ण को छोड़ करके और कुछ नहीं जानती, वो कृष्ण को ये ले जाने आया है और बलराम जी को ले जाएगा। बहुत बहुत दुखी हो करके सबको कोसने लगे, अरे ये बड़े बड़े गुरुजन इस गोकुल के कोई ना कोई तो इनका विरोध करो, वो कृष्ण को लेके नहीं जाए। मन में ये सोचती है, हे भगवान ना ना तुम कृष्ण को लेके जा नहीं सकते, कृष्ण हमारे नयन के तारा है, हमारा विजन है। जैसे कोई व्यक्ति आंखों को निकाल करके ले जाए, व्यक्ति अंधा हो जाए, वो कुछ उसको ना दिखे, ऐसे ही हो जाएगा अगर कृष्ण बलराम चले गए। और माता यशोदा बोलती है, कृष्ण मथुरा जीवा यशोदा सुनी गाओ कृष्ण मथुरा जीवा यशोदा सुनी करुछन्ति रोदन नंद तरुणी रे कला श्रीमुख जोर से गाओ करुछन्ति रोदन नंद तरुणी रे कला श्रीमुख কালি সরিব গোপু জননী ডাকরে কলা শ্রীমুখ জননী ডাকরে কলা শ্রীমুখ জব ভুক লাগতা হে हम कितनी जोर चिल्ला के बोलते हैं भूख लगी है खाना ले आओ, पर भगवान के नाम बोलने के लिए जीवा खुलती ही नहीं। ये कैसी भक्ति है? माता यशोदा चित्कार करके रोने लगी, रे कड़ा कन्हू यदि तू काल गोप छोड़ के चला जाएगा तो मुझे मां बोल के कौन पुकारेगा। जैसे ही सुनी भगवान जाएंगे, आंखों से आंसू बहने लगा। आया नहीं, प्रभात हुआ नहीं, ये संध्या की समय है। आने वाला काल प्रभात में कृष्ण और बलराम जी को क्रूर ले जाएगा, पर आज से अब से माता रो रही है। कृष्ण मथुरा जीवा जसोदा सुनी। जब जसोदा माता ने ये बात सुना कि कृष्ण भगवान मथुरा को छोड़ करके जाएंगे, करुछन तिरोदन नंद तरुणी रे कला श्रीमुख। नंद तरुणी शब्द का अर्थ है नंद जी की पत्नी अर्थात मदर यशोदा। क्या बोलती हुई? खंडसा कर खीर लवणी सर खाई खुआई बिमु काकु कोलर रे कला श्रीमुख। रे कृष्ण, प्रत्येक दिन तू मक्खन खाने के लिए बहुत रोता रहता था, कांख में पकड़ करके दही दधी मक्खन और मिश्री मिला करके मैं किसको खाऊंगी रे। ना ना, तू नहीं जाना। अगर तू चला गया ना, तू नहीं जानता रे कितना कष्ट उठा करके मैं तुझे प्राप्त किया। तुझे जन्म देने से पहले बहुत बहुत देवताओं की स्तुति की। गिरिजापति अति कष्ट से बिली गंगाधर प्रसादे तोते पाइली रे कला श्रीमुख। गिरिजा कहते हैं उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवती सौरा शिवा भवानी रुद्राणी सर्वाणी सर्वमंगला अपर्णा पार्वती दुर्गा मृहानी चंडिकाम्बिका। वो गिरिजा का नाम है, पार्वती का नाम है, दुर्गा जी का नाम है, और वो पार्वती पत्नी है भगवान शंकर जी का। वो गिरिजापति को पूज पूज करके उनकी सर के ऊपर त्यंबकं जडामहे
சுகந்தி புஷ்டிவர்தனம் ஒருவாறு கமிவ பந்தனாத் மிருத்தூர் முக்கியமாமிருதாத் பகுத் வில்லபத்திர சடாயிரே பகுத் தூத் சடாயி. फिर वो शंकर भगवान का महा वैष्णव की प्रसाद रूप में तुझे मैं प्राप्त किया. अगर तू चला जाएगा तो मां बोल के मुझे कौन पुकारेगा. ये हुआ भविष्य विरह. आने वाला समय में संध्या बीती नहीं है, रात्रि का अवसान हुआ नहीं है, प्रभात का सुआगमन हुआ नहीं है और माता यशोदा रो रही है और गोपियां अस्थिर है. गोपियां सबको कोसने लगी और एकत्र होकर के ये मन 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 बना ली, काल जब कृष्ण जाएंगे उनके रथ को हम रुक देंगे. सब गोपियां एकत्र हो गई और प्रभात समय हुआ. प्रभात समय में स्नान शौचादि कर करके सवेरे के समय में भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर के अक्रु जी रथ के ऊपर बैठेंगे, रथ चलेगा. गोपियां सारे रथ के सामने रो रो के मूर्छित हो जाती है और रथ के सामने गोपियां सो गई. मेरे ऊपर हमारे ऊपर चढ़ के जाओ. एक गोपी बोलती है, हे गोविंद मैं जानता हूं हमसे आपका मन भर गया है. अब जब मथुरा नगर में पहुंचोगे, मथुरा की जो कामिनियां, मथुरा की जो स्त्रियां, मथुरा के जो कुमारीगण आपको दर्शन करेंगी, ये मनमोहक रूप को देख करके वो अपने को संभाल नहीं पाएगी, आपका मन उसमें बैठ जाएगा, फिर हम लोग की क्या गति होगी. एक गोपी बोली हे भगवान श्याम सुंदर है बेस हो नहीं. हे श्याम सुंदर, हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूं, ऐसा जो देवमोहक रूप है, ब्रह्म मोहन रूप है, ये रूप में वहां नहीं जाना. ए रूप देखिले पत्थर तरले, ए रूप देखिले पत्थर तरले, युवती वंचीवे नहीं. नंद नंदन हे श्याम सुंदर हे गोपी रंजन हे मन मोहन हे एवेश हो नहीं. ठाकुर जी ये बेश कभी नहीं होना. ये बेश को देख करके पत्थर भी पिघल जाता है तो ये युवती कैसे बच सकती है. मैं जानती हूं ये रूप को लेकर के तुम जाओगे तो सारा कंसपुर की जो कामिनिया है वो आपको देख करके आपको पति रूप में स्वीकार कर लेगी, फिर हम तो अनाथ हो जाएंगे. हमारे लिए सोचो, भगवान बहुत समझाया, गोपियां नहीं सोची. कोई कितने गोपी तो अपना सुदबुद खो बैठी, कितने गोपी तो मूर्छित होकर के महाभाप में गिर पड़ी, कितने गोपियों तो रथ के नीचे सो गई. अगर जाना भी है हमारे ऊपर चढ़कर के चले जाना कृष्ण, किंतु ऐसे अनाथ करके हमें छोड़ करके मत जाओ. दूसरा गोपी बोली, हे कृष्ण भगवान जब आप कदम्ब वृक्ष के ऊपर मोहन वेणु को बजाते थे और वो मोहन वेणु की स्वर जब ये कर्ण कहोर में प्रवेश करता था तो ठाकुर जी रंधन कार्य में मैं बैठी थी और लकड़ी चूल्हा में डाल करके आग जलाती थी रंधन हो जाए. परंतु ठाकुर जी आपके ये सुन की बंसी की रंध्र कान में जब घुसा वो सूखा हुआ लकड़ी में रस भर गया और वो रस इतना भरा आग भी बंद हो गई. सास और ननंद इतना गाली दिए, तब से कुकिंग कर रही हो, कुकिंग समाप्त नहीं हुआ. गोपियां कहती है, हे ठाकुर जी ऐसी सोना भी नहीं बजा देना जो समस्त मथुरावासी आपकी ओर खींचाए। चतुर्दश ब्रह्मांड के पति जब मोहन वेणु को बजाते हैं, श्रीमती राधा रानी जल उठती है, बोलती है रे वंशी तुम इतनी सुंदर क्यों हो और भगवान तुमसे इतना क्यों प्रेम कर बैठते हैं, जिस अधरामृत को पाने के लिए मैं तरसती रहती हूं तुम रोज उसको चुम लेते हो। पर भगवान कृष्णचंद्र वंशी को क्यों इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि वंशी कुछ संचय नहीं करता। हे भक्त मेरे, जिस भक्त के जीवन में कोई संचय नहीं है, जैसे केवल कृष्ण धन है, ये गोपियों के भांति केवल कृष्ण 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 को छोड़कर के दूसरा कुछ नहीं जानती गोपियां, ऐसे ही वंश में जब भगवान अपने हवा को भर देते हैं और वंशी चित्कार करके उस हवा को सभी के कान तक पहुंचा देता है, फिर भी वो फंपा रहता है, उसकी गर्भ शून्य है, वो यही आशा रखता है फिर भगवान भरेंगे, मैं सबको बांटूंगा। वंशी सबको बांट देता है, इसलिए भगवान बोलते हैं वंशी रे तू कितना सुंदर प्यारा भक्त है मेरा, कुछ भी मेरा दिया हुआ नहीं रखता, सबको बांटता है, तो वही भक्त उत्तम है। आलोक वितरे सलिता जथा निज कुजाली परोहित पाई जल द दिए निज कु ढाली परहित पाई पादप जथा छाया भी तरे बलि दिए प्राण महत्व तथा परहित रे। भगवान के भक्त दूसरे की हित चाहते हैं, जैसे बादल अपने को वर्षा देता है उसमें अपना का कोई कल्याण नहीं है, जी जगत का कल्याण है। पेड़ धूप को लेकर के पथिक को छाया प्रदान करता है, दिया अपने को जला करके दूसरे को आलोक प्रकाश करता है, ऐसे महत्व व्यक्ति अपना नहीं देखता दूसरों का सोचता है। गोपियां रोती रही, भगवान कृष्ण अक्रूर को बोले रथ चलाओ, गोपियां मैं तुरंत कंस को बध करके वापस आऊंगा। आंखों में गोपियां देख रही थी, भगवान कृष्ण का रथ और आंखों से देखी नहीं, अतीत हो गई। वो वर्तमान विरह था, विरह प्रेम का सर्वोच्च परिभाव है। वर्तमान विरह में आया, रथ में बैठे थे, आंखों से आंसू बहाया, और भूत शब्दकार थे, अतीत हो गया आंखों से और देखा नहीं। एक बार भविष्य की चिंता मन में आया, क्या कृष्ण वापस आएगा, गोपी बोलती है नहीं रे ये बड़ा लंपट है, हमारा चित्त को चुराया और अब जाएगा उनका मिनियों का चित्त को चुरा लेगा। सारा संसार भगवान को चोर कहा, मूर्ख व्यक्ति भगवान को चोर कहते हैं, भक्त कहते हैं हाँ भगवान चोर है, पर जो चोर आप कहते हो वो नहीं है, कुछ और प्रकार के चोर है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम ब्रजांगनानाम दुकुलम च चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हाँ आज भी ब्रजमंडल में ये कथा फेमस है, क्या ना भगवान ने मक्खन चुराया, वो मक्खन चोर कहलाए। केवल यही नहीं, गोपियों की वस्त्र भी चुराया। भक्त कहे वो भी ठीक है, पर अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, क्या तुम नहीं जानते भगवान श्री कृष्ण चंद्र जन्म जन्मांतर के जो पाप है उसको भी चुराने में समर्थ है। हाँ? जीव जन्म जन्मांतर में इतना पाप नहीं कर सकता जो एक कृष्ण नाम उस पाप को जला सकता है। एक कृष्ण नाम जितना पाप को जलाने में समर्थ है, जीव जन्म जन्मांतर में इतना पाप नहीं कर सकता। गो कोटिदानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युत कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम तथापि न तुल्यम एकः गोविंद नामनाथ। यदि कोई व्यक्ति करोड़ों गायों को दान दे दे, गो कोटि दानम, ग्रहणीषु काशी, सूर्य ग्रहण के समय काशी बनारस में जहां भगवान शिव बैठे हुए काशी विश्वनाथ, उनके चरण को गंगा धोती रहती है, वहां पर बैठ करके तपस्या कर ले, जो पुण्य एकत्र हो जाएगा और सुमेरु पर्वत जैसे सुवर्ण यदि ब्राह्मण को दान दे दे, एक अयुत यज्ञ यदि अश्वमेध यज्ञ देती यज्ञ को संपन्न करे, जितना फल एकत्र हो जाएगा, 100 करोड़ों गायों का दान और सूर्य ग्रहण में तपस्या करना काशी में और सुवर्ण पर्वत जैसे सुवर्ण का दान और यज्ञायुतम एक अयुत यज्ञ का जो फल अगर सभी को मिला दिया जाए, तथापि न तुल्यम, ये सभी पुण्य मिल करके एक कृष्ण नाम के बराबर नहीं हो सकता। और ये गोपियां कोई यज्ञ नहीं किया था, कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, कोई स्तुति सब नहीं जानती थी, केवल जानती थी ये हमारे कृष्ण है, नयन के तारा है, हृदय के देवता है, कृष्ण है तो सब है, कृष्ण नहीं है तो कुछ भी नहीं है, यही भाव में गोपियां थी। आज आंखों से दूर हो गया रथ, अतीत हो गया, मन में सोचा कंस बड़ा निष्ठुर है, मार डालेगा, और दूसरी गोपी बोलती है ये छलिया है, हमसे भी छल किया, दूसरों से भी छल करेगा, तो इसकी स्वभाव ऐसा है रे, तो क्या किया जाए, और रथ चला गया। रथ पहुंचा, वो भी संध्या के समय, संध्या आएगा, रथ पहुंच गया कहां पर, ना मथुरा नगर में, और मथुरा के द्वार देश में, मथुरा के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं और भगवान कृष्ण और बलराम उतर गए और अक्रूर जी जाकर के ये समाचार कंस को दिया, जब कृष्ण बलराम को लेकर आया हुआ हूं, और अक्रूर जी यही स्तुति उस समय भगवान श्री कृष्ण को करते हैं और बीच में कुछ बातें में छोड़ दिया, जमुना की जल में भगवान जब उपस्थित हुए उस समय रथ रुका और विदुर अक्रूर जी जमुना के जल में स्नान करने गए और जब नाभि चक्र के जल तक पहुंचे और उन्होंने जमुना की जल में देखा कृष्ण बलराम पानी के अंदर डूबे हुए हैं, और शास्त्रकार कहते हैं, वृंदावन ठाकुर दास कहते हैं, जब भी भक्त कोई नदी में स्नान करने जाए, तीर्थ नदी में गंगा यमुना इत्यादि नाभि चक्र तक पानी में जाना, जाकर के गायत्री का जप करना बहुत शुभ फल देता है। और शंका हुआ जो कृष्ण बलराम तो रथ के ऊपर थे, मैं तो स्नान करने आया हूं, पर ये जल के अंदर ही कृष्ण और बलराम कौन है, फिर उठ करके जमुना के जल से जा करके देखे, वो तो रथ के ऊपर बैठे हैं, फिर आए, फिर जमुना के जल में देखे, कृष्ण भी है, बलराम जी है, सभी देवता देवियां हैं, जक्ष रक्ष किन्नर सब पानी के अंदर है, बोले हे प्रभु ये किस प्रकार की माया आपका है, आकर के भगवान के चरण में गिरे। भगवान ने कहा तथास्तु, कोई बात नहीं मेरे भक्त, चलाओ हमें ले चलो मथुरा नगरी में, और मथुरा नगरी में पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ से उतर रहे हैं, इसको देख करके जो मथुरा के निवासी भगवान कृष्ण को जब देखा, जब कामिनी कन्याएं देखा यंग लड़कियां, तो भगवान उसको कोटि कंदर्प की रूप देखा, जब वृद्धा माता ने देखा भगवान कृष्ण छोटा सा बालक और बालक के रूप में देखे, वृद्धा माता यही सोची ये कंस क्या इसी को बुलाए, छोटा सा बालक को मारेगा, इसलिए ये प्लान बनाया जिसने, और जो द्वेष भाग में भगवान को देखा, भगवान का शरीर ऐसे लगा जैसे साक्षात यमराज उपस्थित है, आज सबको मार डालेगा। इस समय में हमारे ओडिशा के एक एक जगन्नाथ जी के भक्त कवि मथुरा प्रवेश का एक वर्णन करते हैं, शास्त्र में तो थोड़ा है, ये बहुत विस्तृत वर्णन है, सब भक्तों को मैं सुनाना चाहता हूं, आप सभी को आनंद होगा, और मैं आप सभी भक्तों से निवेदन कर दूंगा, जिह्वा को रुकना नहीं, आनंद से गाओ, भक्ति बढ़ के आएगा और मथुरा मंगल की स्थिति यहां आ सकता है, हमारे राजा रासबिहारी तो
स्वयं कृष्ण हैं।
कोड़ा को रे बोरो कन्हाई संगे रोहिणी सूत करंती मथुरा विजय दांडे देखो संगात। ये कड़ा करेवर देखने के लिए घने काले हैं कृष्ण, कन्हाई ये कन्हाई है भगवान श्री कृष्ण है, और संगे मतलब साथ रोहिणी सूत को लेकर के आए हैं। ये रोहिणी सूत कौन है ना, भगवान बलराम जी, दाऊ जी, बड़े भैया जी को साथ लेकर के मथुरा विजय दांडे देखो संगात। जब वो रास्ता पर चल रहे हैं मथुरा के गांव में, हे संगात, हे साथी, देखो देखो कृष्ण बलराम आए हैं। कैसे लग रहे हैं? खसी पड़ू छिकी आकाशु, गाओ। किए गंगा जो मुना क्षीर संगे प्राण शोषिले, नाश गला पुतना खसी पड़ुछ कि आकाशु किए गंगा जमुना। क्या ऐसे हुआ है आकाश मार्ग से गंगा और यमुना एक साथ गिर पड़े हैं? गंगा श्वेत है, जब हिमालय से गंगा बहती है देखो एकदम मोती जैसा चमकला, ऐसे ही बलराम जी दिखाई पड़ते हैं। और कृष्ण बलराम और बलराम जी यमुना नदी, सॉरी कृष्ण भगवान यमुना नदी जैसे श्याम वर्ण, ऐसे लगता है गंगा जमुना स्वर्ग से उतर आए हैं। और ये दोनों ने क्या किया है सखी, ना क्षीर संगे प्राण शोषिले नाश गला पुतना। क्या तुम नहीं जानते सखी, ये जो बालक है ना, ये पुतना राक्षसी की जो मां का रूप लेकर के स्तन में घातक नाम जहर को भर करके पिलाने गई थी, वो स्तन पान करते करते प्राण को हर लिया था, ये वही है रे। गहन कानन वन रे घोर वर्षा काल गिरिबाम करे धरिले नंद यशोदा बाळ
तुम्हें याद है जब इंद्र राजा ने इतना भयानक क्रोध में आकर के जब पूजा उसका रुक गया तो अनुचास वायु को बुलाया, वर्षा को बुलाया और पत्थर से त्रसित कर दिया समस्त अंदपुर को, और गोपियां त्रसित हुई थी। वही जो है ना, उसी समय सभी भक्तों का दुख को निवारण करने के लिए ये वही नंद का बाल है, नंद का लाला है, नंद का बेटा है, जो कनिष्ठ अंगुष्ठी में गोवर्धन को धारण किया था, ये वही है। फिर
घरे न रहंती गौड़े बड़ अधम जाति घेने बच्छा वृंद बाड़के बने बुलंती नीति ये वही बालक है, सवेरे सवेरे उठ करके सभी गाय और बैल को लेकर के घास चराने जाते थे, ये वही बालक दुना है। और ये घर में रहना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये गोपाल वर्ण से जन्म हुए हैं और दूध दूध खीर देने के लिए वो गायों को घास खाने के लिए वो चराते थे, गाय चराने जाते थे, यही बालक है ये। उइया सूचि की पूर्णिमा, शशि मधुसागरु उठ मधुपुर युवती उगाळेबा आगरु, उठ मधुपुर युवती उगाळेबा आगरु। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जो मुख मंडल है वो कैसे दिखता है ना, जैसे क्षीर सागर से शशि शब्द का अर्थ है चंद्रमा, आज क्या पूर्णिमा का रूप लेकर के उदय हो गया है। उठो जागो जागो ओ कुमारियां, देखो ये भगवान के मुख कितना सुंदर है, ये ब्रह्म मोहक रूप है, ये चिताकर्षक रूप है, ये देव दुर्लभ रूप है, आज वो हमारे घर के सामने जा रहे हैं। देखो देखो चंदन वैसमो करंती, मोरा है ऊची मन, चित्त के धरी व युवती, चाहे चंद्र वदन, मेरा मन ऐसे कहता है ऐसी पूर्णिमा रूपी चांद की मुखारबिंद के ऊपर भ्रूलता के ऊपर मैं एक एक बूंद करके चंदन लगा दूं, और ये ठाकुर जी और कितने अच्छे लगे हा? तो मैं चंदन लगाना चाहती हूँ ठाकुर जी की कपोल में, और ये रूप जब चंदन लग जाएगा, ये जो रूप उम्र के आएगा, ऐसे कौन युवती हो सकता है जो आप प्राण पकड़ के रख सकता है, वो तो बिल्कुल नौछावर हो जाएगा ठाकुर जी की चरण में। छन का पसीला छाती रे जाति कुलौ पेखी, छाड़ीबे जीवन जसोदा, गोपे कृष्ण न देखी। उन कन्याओं की हृत्पिंड दुग्धुक करने लगा, ऐसे सुंदर बेटा को यशोदा जब नहीं देखेगा, वो आज आ गया है इधर, क्या वो प्राण पकड़ सकती है? वो तो वास्तविक प्राण निकल जाएगा शरीर से यशोदा का, ऐसे सभी कन्याएं सोचती हैं मथुरा के भगवान को दर्शन करके। जहर संगत महुरा आसी हेलानी यत, युवती कूल कु दैव कलाए हतपात। ये दैव का ये विधि का क्या विडंबना है, ऐसे सुंदर रूपवान मोहक रूप को भेजा, यदि ये हमें प्राप्त नहीं हो जाए तो जहर खा करके हम प्राण त्याग देंगे, ऐसा ऐसा मथुरा के वासी सोच रहे हैं। और नयन ऊपरे भ्रूलता किए काम कमाण, नुहंती ए पोए कहारी, सबु गोपिंक प्राण।
ये जो दोनों भाई आए हुए हैं ना, ये किसी का नहीं है रे, ये है तो केवल गोपियों का। ये हमारे कैसे होंगे? संदेह। ये जो दोनों भाई आए हुए हैं गंगा जमुना सदृश देखते हैं, मन शशि चंद्रमा के पराए पूर्ण चांद के समान दिखते हैं, जो क्षीर सागर से चांद जैसे निकलती है ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं, पर ये वास्तव में हमारा नहीं है। फिर टोपी टोपी करी चंदन मंडी छत्ती की करे, एक बारे चाहा मथुरा दंडे गोविंद विजय। ये टुपा टुपा करके जो चंदन लगाया गया है ये अतीब सौंदर्यता को दिखाता है। क्या ठाकुर जी अपने हाथों में लगा करके इतना सुंदर बने हुए हैं? और देखो देखो सखी दौड़ता हुआ आकर के देखो, जो गोविंद है आज वो हमारे रास्ता पर, दंड शब्द करते हैं घर के अंगना में बाहर में चल रहे हैं भूमि पर। आओ आओ दर्शन करो, ठाबे ठाबे गोड़ चहल सिंगा बेणु बैसी ठिया होई भक्त दासता, दंडे देखंती आसी। जो भक्त भगवान के दास वृंद वो वंशी बजाते हैं, सिंगा बजा करके भगवान का दर्शन करने आए हुए हैं, सब एकत्र होकर के भगवान को देखते हैं और भगवान कंस कंस के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। डाकंती एक कु आरे को आस जीव जीवन दोलारे ए रूप देखिबा आसी मधुसूदन। आओ जल्दी जल्दी आओ, देखो ये आंखों को पवित्र करो। ये जो मधुसूदन है, मधु नामक दैत्य को जो संहार किया था, आज वही हमारे आंखों के सामने जा रहे हैं। ढली ढली कृष्ण नाचंती भंगी देखमी तोणी, ढालंती की रूपे डोलाकू क्यों छटके आनी। ये भगवान कृष्णचंद्र और बलराम वो मथुरा दंड में कैसे चलते हैं ना, ढली और ढली जैसे मतहस्ती, एक कभी इधर की झुकता है और कभी उधर की झुकता है, ऐसे भगवान अपनी नेत्रों को एक तरफ से आधा चाहनी इस तरफ देखते हैं और थोड़ी टेढ़ी नेत्र से इस तरफ देखते हैं, और ऐसे आंखों को चंचलता देख करके वो जो कामिनियां हैं और माथागण हैं वो चंचल हो उठती है, बोलती है सखी हे मितणी अरे दौड़ करके आ देख, अरे कृष्ण तुझे देख रहे हैं रे, और ऐसे देखा तिरछी चाहनी। नहीं वो बोलते नहीं वो तुझे देख रहे हैं तुझे देख रहे हैं। भगवान ढलते ढलते ऐसे ही सुंदर भाव में चलते हैं और कभी इधर भी देखते हैं कभी उधर भी देखते हैं, और भगवान तो वो दिया है
दिया को जिस एंगल से देखो दिया उसी एंगल से आपको दिखाई पड़ता है। और कामी जब शत्रु भगवान को देखता है तो वो यमराज के अवतार है, जब कामिनिया काम रूप पे प्रेम रूप करने के लिए भगवान को देखती हैं, वो कोटि कोटि कंदर्प के रूप में देखती हैं, और जब वृद्धा जननिया भगवान को देखती हैं, एक छोटा सा बालक रुनता हुआ चलता हुआ दिखती है, जो जिस भाव से भगवान को देखा भगवान इसी भाव में सबको दर्शन देते हैं। रामो कृष्ण बेनी भाई गोदु है दुई की तोरा रंगे नाचे आसू छंती गो जन्हे गगने तारा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ऐसे ऐसे चलते हैं जो मानो जे आकाश की तारागण झिलमिल करके कितना सुंदर दिखते हैं ना आकाश में, ऐसे ही दोनों भाई दिखाई पड़ते हैं। लाज भय त्यागी करीवा कृष्ण संगे पीरती लाभ हेउथिब आम्भर हसुथिबा गणिति। ये शब्द में जब तक लज्जा भगवान के चरण में समर्पित नहीं होता ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो सकता, वो शुद्ध प्रेम उदय नहीं हो सकता। लाखों व्यक्ति मंदिर में आते हैं, धनाढ्य व्यक्ति भगवान के सामने प्रणाम करने के लिए पहले देखते हैं कपड़ा तो नहीं खराब हो जाएगा, उनको वो चिंता पड़ता है। पर आज ये कामिनिया क्या बोलती है, ना लाज को छोड़ करके भय को त्याग करके चलो सखियां कृष्ण के साथ प्रीति को जोड़ देते हैं। जब तक कृष्ण के साथ जीव का संलग्न नहीं होता, जीव नहीं जुड़ जाता परमात्मा से, तो फिर ये रस का उदय कैसे हो सकता है। हाँ, लोग हमारी निंदा करे, लोग हमें कुछ भी कहे, इसमें हमारा ही लाभ है सखी। बोले भगवान से संबंध हो जाएगा तो सारा जीवन हम हंसते रहेंगे। मनुष्य जीवन लाभ यदि गोविंद करे भाव वो जीव बड़ा धन्य हो जाता है। मनुष्य जीवन का लाभ उसी में है जब गोविंद में उसका भाव बैठ जाए, उसका जन्म धन्य धन्य है। हेले हे उपछे कुलटा हार करिबू गले हसुथिब तंक संगते बसिथिबु गोकोले। सारा संसार हमें कुलटा कहले, कुलटा कहते हैं जिसकी चरित्र में चंचलपन है, चरित्र जिसकी ठीक ना हो। हे सखियां, यदि सारा संसार हमें कुलटा भी कहे हमें उसकी चिंता नहीं है, किंतु भगवान की गोद में बैठ करके हम हंसना चाहती हैं, हम केवल हंसना चाहती हैं। करके छाड़ी लज्जा भयो तारूप डर पणे माजीबा सार भक्त दास कहेता ध्याई रजनी दिवा। ये कन्या है भगवान, भगवान और ये गोपियां, ये गोपी भाव में कोई अंतर नहीं है, ये भगवान का ही दूसरा रूप है। यहां पर स्त्री का वर्णन नहीं है, भगवान की प्रतिबिंब का वर्णन है। जैसे छोटा सा बालक उरूणता हुआ, वो दर्पण के सामने पहुंच जाता है और देखता है वो दर्पण के अंदर और एक बालक आ गया है और वो बालक के साथ अपने हाथ को मिरार के ऊपर थप्पड़ मार मार के खेलना चाहता है। उसी प्रकार भगवान के प्रतिरूप, भगवान के ये प्रतिबिंब गोपियां हैं, जिन गोपियों के साथ भगवान की ये लीला लीला चलता है। और जब जीव व मनुष्य इस लीला का श्रवण करता है तो उसका क्या होता है, न विक्रीडितं ब्रजवधू भूरिदम च विष्णु श्रद्धानुतनु शृणुयाद वर्णये दयः भक्तिं परांग भगवती प्रतिलब्ध कामः। जब भगवान श्री कृष्ण का ये गोपियों के साथ जो अनन्य क्रीड़ा, अनन्य लीला है, जब इसको अंजलि भर भर के कान के माध्यम में वो जीव पी लेता है, हृदय पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है और वो जीव पिबन्ति ये भागवतः आत्मनसताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम पुनन्ति ते विषय विदुषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहंतिकम। महात्मागण, ज्ञानी जन, भक्तजन इस चरित्र को, भगवान के मथुरा मंगल यात्रा को, भगवान के गोपियों के साथ जो रमण वो चरित्र को वो बिना टेक से बांटते रहते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति वो है, सज्जन व्यक्ति वो है, जो अंजलि भर भर के रंध्र कर्ण कोहर में इसको पी लेता है। पी लेने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मस्तर्ज रूपी जो पैजने स्नेक हृदय के अंदर बैठे हुए हैं वो सब निकल करके भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद हृदय जब निर्मल हो जाता है, ब्रजंती तत्चरण, दैट सोल इज बिकम एलिजिबल पर रीच सुप्रीम लोटस फीट ऑफ मुकुंद, और वो भगवान के धाम में नित्य सेवा में लग जाता है। इसी प्रकार ये लीला को, भगवान के मथुरा यात्रा लीला को जो भी जीव श्रवण करता है वो भी वैकुंठ में निवास होकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति तब करते हुए आनंद से गाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। भक्त मेरे, जाने अनजाने में आप लोगों के पवित्र चरणों में काय, मन और वाक्य से यदि किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो, अपना भाई अपने वैष्णव के एक वैष्णव समझ करके मुझे क्षमा देना। हमारे प्रभु जी कितने सुंदर हैं, कितने ज्ञानी हैं, फिर भी कितना हम्बल है। मैं हमारे भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के अरे प्रभु जी को बता रहा हूं। देखो हमारे प्रेसिडेंट जी को निश्चल रूप से सभी भक्तों की सेवा में है। देखो मेरे इस भक्त को जब से हम लोग आए तब से बैठे हुए हैं, और आप सभी भी, जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में ज्वाइन किया और प्रभुपाद की सोसाइटी में आ गए, वो सभी परमहंस हैं। मैंने उस दिन भी आपको कहा था, जो वैष्णव तीन कैटेगरी के होते हैं। प्रथम वैष्णव वो है जो एक बार कृष्ण नाम ले लेता है। प्रभु कहे जारो मुखे सुनी कृष्ण नाम, प्रभु मतलब गौरांग महाप्रभु कहते हैं, जिसके मुख में एक बार मैं कृष्ण नाम सुनता हूं। जारो मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम, वैष्णव तो सही वो वैष्णव है। परंतु वैष्णव तरह वैष्णव कौन है, उससे ऊंचा वैष्णव कौन है? ना कृष्ण नाम निरंतर जहां रवदने वैष्णव श्रेष्ठ सही भज तहार चरणे। जिसके मुख में अनवरत रूप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो और थोड़ा अच्छा वैष्णव है, वैष्णव तर वैष्णव है, वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव है। उसकी चरण की वंदना करो और उसकी शरण में जाओ, गौरांग महाप्रभु ने कहा। और उससे बढ़कर के वैष्णव कौन है? जहां रो दर्शन ऐसे मुखे कृष्ण नाम, जिसके दर्शन मात्र में मुख में कृष्ण नाम आ जाता है। वैष्णव तार वैष्णव श्रेष्ठ सही वैष्णव प्रधान, जिसके दर्शन मात्र में हरे कृष्ण मुख में उच्चारण हो जाए, कृष्ण नाम आ जाए, वो वैष्णव में श्रेष्ठ और प्रधान वैष्णव है, अर्थात उत्तम भागवत है। क्या हमारे भक्त जब ही बाहर जाते हैं, रोड के ऊपर जाते हैं, अरे कौन जा रहा है? ना हरे कृष्ण वाले जा रहे हैं कोई भी, अरे कौन है? ना हरे कृष्ण वाले, अरे कौन आया था? ना हरे कृष्ण से भक्त आया था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी फोन आता है, हरे कृष्ण प्रभु जी कैसे हो, कृष्ण नाम पहले। तो जिसके दर्शन मात्र में कृष्ण याद आ जाए वो तो परम वैष्णव, गौरांग महाप्रभु ने कहा। तो आप इस थ्योरी में अपने को डालो, आप लाइव मेंबर में जाते हो, कौन आया? ना हरे कृष्ण आया, देखते ही हरे कृष्ण नाम। तो प्रभुपाद कितने कृपालु है और हम कितने धन्य धन्य सौभाग्यवान है जो इस सोसाइटी में परमंश स्थिति में आते ही परमंश स्थिति में जुड़ जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद को जय जयकार हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, आप सभी वैष्णव वृंद का जय हो। हरि बोल, जय जय।